जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री बलि महाराज की जय। श्री वामन देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Seminal Devotees. All glories to the Seminal Devotees. All glories to the Seminal Devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jaya Srila Prabhupada. Bahut dhanyabad Gudakesh
Maharaj ki.
Bahut dhanyabad Gudakesh Prabhuji. Bahut sundar ki. Bahut achha kirtan. Radhe. और इनका गीत बंगला और गुजराती टोन मिला करके हो रहा था, गरबा नृत्य भी गरबा नृत्य जैसा और बंगाली टोन बहुत अच्छा। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 13 अथा आह कुशनसं राजन हरि नारायण अंतिके आसीना ऋत्विजा मध्ये सदसी ब्रह्मवादिना। अथाहो सन सम्राजन हरिर्नारायणोंतिके आसीनम ऋत्विजा मध्ये सदसी ब्रह्मवादिना। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। शुक्र उवाच कुतस्तत् कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः। मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालारः वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्र नाम संकीर्तनं तव तथापि वदतो भूमान् करिष्यामनुशासनम् यच्छ्रेयः परं पुरुषाम् यत्तवाज्ञानुपालनम्। अथ इसके बाद जब श्री बलि महाराज श्री प्रहलाद महाराज के साथ अपने सारे परिवार के साथ तथा असुरों के साथ सुतर लोग चले गए तब आह बोले श्री भगवान बोले उसना से शुक्राचार्य जी से राजन हे महाराज परीक्षित हरि ही समस्त भक्तों का दुख हरने वाले और अपनी लीलाओं से समस्त विश्व को आकृष्ट करने वाले नारायण समस्त जीवों के परम आश्रय अंतिके अपने समीप ही आसीनम बैठे हुए ऋत्विजान मध्य ऋत्विकों के बीच में सदसी सभा में ब्रह्मवादिनाम वेदवादी वेद के अनुसार चलने वाले ब्राह्मणों की सभा में तो कल कथा हुई थी कि भगवान ने कहा वामन देव ने बलि महाराज से इंद्रसेन महाराज हे महाराज बलि आप अब सुतल लोक जाइए सुतल लोक में कोई दुख नहीं है सब प्रकार का सुख है और वह एक प्रकार से मेरा ही स्थान है स्पेशल मेरे लिए बनाया गया है। तो वहाँ फिर प्रहलाद महाराज से भगवान ने कहा कि आप अपने पौत्र के साथ जाइए वहाँ सुख से रहिए मेरे कथा में मेरी भक्ति के आनंद में सुखी रहिए और आपको कोई नहीं सता पाएगा मैं वहाँ नित्य रहूँगा मेरा दर्शन आपको होगा और मेरे प्रभाव से मेरी भक्ति के प्रभाव से सुतल लोक में आसुर भाव नहीं बढ़ पाएगा तुरंत क्षीण हो जाएगा तो आप जाइए। तो श्री भगवान की आज्ञा पाकर प्रहलाद महाराज अपने पौत्र श्री बलि महाराज के साथ अपने सारे समाज के साथ भगवान की परिक्रमा किए प्रणाम किए और श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किए भगवान शिव को प्रणाम किए प्रणाम करके परिक्रमा करके भगवान से आज्ञा ले करके चले गए। जब चले गए तब भगवान ने क्या लीला किया वहाँ ब्रह्मवादियों की वो सभा लगी हुई थी बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब बैठे थे ब्रह्मवादी ब्रह्म का अर्थ होता है वेद वेद पढ़ने वाले वेद की ही चर्चा करने वाले वो सब थे। आज के सभा में सब अखबारवादी हो गए हैं अखबार से ही बात करना ये निकला वो निकला ये वो दिन भर वो कचड़ा पढ़ करके इसके बाद जहाँ तहाँ उगलते रहते हैं और लोगों के कानों में डालते रहते हैं। ब्रह्मवादी का अर्थ है वेद के श्लोकों को बोलना वेद के अनुसार चलना शुभ कर्म करना भगवान की भक्ति करना इसको वेदवादी या ब्रह्मवादी कहते हैं। ब्रह्मवादी के विपरीत ठीक मायावादी ब्रह्म और माया ठीक विपरीत तो अखबार पढ़ना ये सब मायावादी का काम है जो भी है कचरा सब कुछ। तो ब्रह्मवादी परम पवित्र ब्राह्मणों की उस महान सभा में शुक्राचार्य बैठे थे, अंति के भगवान के बिल्कुल समीप थे, तो सबकी सभा लगी हुई थी। सभा में और वो भी ब्रह्मवादी मुनियों के बीच में, ऋत्विजों के बीच में, भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा, ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वतः जत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्म दृष्टम समं भवेत्। भगवान को हरि कहा जा रहा है यहाँ। भगवान ने सबका दुख हर लेते हैं और सबके मन को अपनी लीलाओं से हर लेते हैं, और नारायण है, नारायण उन्हें इसलिए कहते हैं, नार जीव समूह तस्य आश्रय अयम, समस्त जीवों के आश्रय हैं भगवान, इसीलिए उनको नारायण कहते हैं। नर शब्द के समूह को, नर का अर्थ है जीव और नार का अर्थ होता है जीवों का समुदाय, और उसके अयन आश्रय समस्त जीवों के जन्मदाता और पालन करता भगवान है सबका, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। परम मनोहर ऐसे श्री भगवान शुक्राचार्य से बोले, ब्राह्मण हे वेदमय, हे वेद के अनुसार चलने वाले, हे परम शास्त्रज्ञ, हे ब्राह्मण, शिष्यस्य वितन्वतः कर्म वितन्वतः छिद्रम संतनु, आपका शिष्य भगवान याद दिला रहे हैं कि आपने भी साप दे दिया उसको, ये मेरी लीला है, आप चिंता मत कीजिएगा। तो आप अपने शिष्य पर क्रुद्ध हो गए, भगवान ने इस तरह से बोल रहे हैं, आप अपने शिष्य पर बलि महाराज पर क्रुद्ध हो गए और कुछ जग में कमी देख करके ही क्रुद्ध हुए। ये भगवान का मीठा व्यंग है, जग में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जग में कमी देख करके, उनका अभिमान देख करके, या जैसे भी आप क्रुद्ध हो गए, लेकिन आपका शिष्य है इसलिए उसके अपराध को क्षमा कीजिए। बलि महाराज चले गए हैं, लेकिन उनके परोक्ष में भगवान बोल रहे हैं कि आपके शिष्य इस यज्ञ में कमी रह गई है, छिद्रम मतलब न्यूनता, कमी, तो उसको संतनु, तो उसको पूरा कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए, मतलब पूर्व परिपूर्ण कर दीजिए। जो भी जत्तत कर्म सुवैश्यम, तो बलि शुक्राचार्य जी ने कहा, जजमान तो चला गया सारा समाज, तो अब हम कैसे यज्ञ को पूरा करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा कोई यज्ञ या दान तप आदि जो भी है केवल देख लिया जाता है तो समम भवेत। समम का अर्थ होता है न कमी न बेसी, बराबर, बराबर मैंने ठीक, बराबर ठीक हो जाता है। ब्राह्मण अगर यज्ञ करा दें तब तो कहना ही क्या है, केवल देख लें तब भी वो पूरा हो जाता है। देखने का मतलब है कि वो देख लें क्या कमी है, क्या सब ठीक कर देंगे, लेकिन भगवान कहते ब्रह्म दृष्टम समम भवे, ब्राह्मण उसे देख लें केवल तो सब ठीक हो जाता है, अर्थात वो सब ठीक कर देते हैं। ब्राह्मण ही समझते हैं कि यज्ञ में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, कैसे पूरा होगा, तो ब्राह्मण देख लेते सब ठीक हो जाता है, इसमें कोई जजमान की जरूरत नहीं है। और जितना भी घी चाहिए और सब चाहिए वो पहले से ही बलि जुटा करके दे दिया है, और दक्षिणा आदि भी आप लोगों को पहले ही दे दिया है, इसलिए उसका यज्ञ पूरा कर दीजिए। तब शुक्राचार्य ने कहा, कुतस्तत् कर्म वैषम्यम जस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेषु यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। उस व्यक्ति के कर्म में, यज्ञ में क्या वैषम्य है, क्या कमी हो सकती है, जिस यज्ञ में कर्मेश्वर कर्म के नियंता या प्रेरक प्रवर्तयिता सबके हृदय में स्थित कर्म करने की प्रेरणा आप देते हैं, आप कर्मेश्वर हैं और यज्ञेश हैं, यज्ञ के फल के भोक्ता हैं, आप ही यज्ञ फल भोक्ता हैं और उसके प्रवर्तक हैं और स्वयं यज्ञ पुरुष है, आप यज्ञमय हैं, जिसके यज्ञ में, जिस बलि के यज्ञ में सर्वभावेन पूजित हो, सर्वभाव से आप पूजित हुए, आपकी पूजा हुई। सर्वभाव का अर्थ भाव माने वस्तु भी होता है और भाव माने विचार। सर्वभाव से सर्वभावेन भारत भगवान गीता में प्रयोग करते हैं, भक्त में सब प्रकार से भजन करता है। तो सर्वभाव का अर्थ पूर्ण समर्पण पूर्वक शुद्ध मन से आपको स्वामी मान करके और समस्त वस्तुओं से देह गेह आदि सब कुछ समर्पण कर, सारा धन अर्पित किया, अपना स्वजन सब कुछ अपना देह अर्पित किया। तो जिस बलि ने आप यज्ञ पुरुष को, कर्म के ईश्वर को, यज्ञेश को पूजा सब भाव से, उसके यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रभु आप कैसे बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है, इसमें कमी क्या है यज्ञ में। यही तो यज्ञ आज तक ठीक ठीक पूरा हुआ है, जिसमें आप साक्षात प्रकट होकर पूजित हुए और सारा विश्व स्वीकार किए। आपके पूजा की बात तो दूर रही, यदि आपके नाम का अनुकीर्तन किया जाए तो यज्ञ दान तप आदि में जो भी कमी होती है वो केवल नाम कीर्तन से पूरी हो जाती है। तो जिसके नाम कीर्तन से सारी कमी पूरी हो जाती है, उसी की पूजा इस यज्ञ में हुई है, तो कमी क्या है, कुछ नहीं कमी है। मंत्रतस्तंत्रतस्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। किसी यज्ञ में यदि मंत्र पढ़ने में कोई भूल हो जाए, मंत्र की दृष्टि से गलती हो जाए और तंत्र की दृष्टि से गलती हो जाए, तंत्र का अर्थ होता है पूजा का प्रकार, यज्ञ का प्रकार। जैसे अभी मान लीजिए यज्ञ में अगरबत्ती दिखाना है तो उसके पहले ही कोई हवन करने लगे, या कोई इस क्रिया को पहले करना है उसको बाद में करे, या अधूरा करे, ये करे, तो उसको तंत्र की दृष्टि से गलती कहेंगे। और मंत्र की दृष्टि से गलती, कोई मंत्र पढ़ने में फास्ट पढ़ दिया या अधूरा पढ़ा, तो स्वाहा 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 मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया या कोई मंत्र बहुत लंबा पढ़ा ओम, और आलस्य आ रहा है पंडित को, ओम बोल करके फिर मंत्र धीरे धीरे चालू करेगा, तो मंत्र की दृष्टि से गलती। मंत्रतश्छिद्रम, मंत्र की दृष्टि से कोई कमी और तंत्र की क्रिया की दृष्टि से कोई कमी। देश और यज्ञ का, पूजा का, भगवान की पूजा का स्थान नहीं, भगवान की पूजा नहीं, यज्ञ का स्थान ठीक नहीं है, देश खराब है, उभर खाबर है, या जहाँ मृगसार नहीं घूमते हैं, या बहुत गलत स्थान है, वहाँ कोई शुभ काम हो रहा है उसमें वो कमी करता है। और दूसरी बात है काल, समय ठीक नहीं होता। काल का छिद्र देश का छिद्र, मंत्र का और तंत्र का छिद्र, और अर्ह पात्र का छिद्र, कोई पात्र ठीक नहीं है, और वस्तुतः और वस्तु घी आदि ठीक से नहीं है, उसमें घी के बदले डालडा हो गया है किसी यज्ञ में, मान लीजिए ये सारी कमियां रह जाएंगी, ये आराधना नहीं देवताओं की हो पाएगी। लेकिन जो भी कमी है, सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव, आपका नाम का अनुकीर्तन, केवल नाम का उच्चारण सारी कमियों को दूर कर देता है, उस यज्ञ को पूर्ण कर देता है। तो उस यज्ञ में आप जहाँ, कीर्तन की तो बात ही क्या है, आप साक्षात पूजित हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं। यह भगवान के नाम की महिमा। कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो अंत में वो भगवान का कीर्तन कर लेता है तो सारी कमियां पूरी हो जाती। यही इसीलिए सिस्टम है, यह विधि है वास्तव में वैदिक काल से सब समय से कि हम भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तो सब प्रकार की कमी पूरी हो जाती है, कोई कमी नहीं है। तथापि वदतो भूमन करिष्या अनुशासनम जत श्रेय परम पुंसम जत तवाज्ञान पालन। इस फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, जीव के जीवन में सबसे बड़ा श्रेय यही है, उसके जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, जत तवाज्ञान पालन, आपकी आज्ञा का पालन। कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, आप इसमें पूरी हैं, फिर भी आप कहते हैं तो मैं करा देता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, शुक्राचार्य के प्रति जो लोग दोष दृष्टि करते हैं कि ये बलि को दान देने में बाधा आती है, ये है वैसे हैं, लेकिन कई प्रसंग ऐसे पता चलता है कि शुक्राचार्य भगवान की महिमा को बढ़िया से जानते हैं, उनके नाम संकीर्तन की महिमा को जानते हैं, उनके पूजा की महिमा को जानते हैं। कुछ काल के लिए भगवान उनके हृदय में बैठ कर विपरीत बात बुलवा रहे थे बलि महाराज का जस बढ़ाने के लिए, कि गुरु के रोकने पर भी ये मुझको दान दे ही दिया, ये जस देना चाहते थे, अन्यथा शुक्राचार्य परम शुद्ध व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अभिनंद हरे राज्ञाम उष्णा भगवान इति यज्ञ छिद्रम समाधत्त बलेर विप्रसि भी सह। देखिए श्रील सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य को भगवान कह रहे हैं, भगवान का अर्थ है परम पूज्य, परम पूज्य और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, वेद के परम विद्वान, परम शुद्ध भगवान। तो भगवान उषना, कविनाम उषना कवि, गीता में भगवान कहते हैं, शुक्राचार्य जी का एक नाम है उषना। तो भगवान उषना, क्या सुखदेव गोस्वामी का आदर है शुक्राचार्य के प्रति। ये भगवान उषना जब इस प्रकार से भगवान की आज्ञा को सुने तो यज्ञ छिद्रम समाधत्त, यज्ञ के सारी कमियों को, जो लोक दृष्टि से कमी, तो वास्तव कमी कुछ नहीं थी, ठीक से हवन आदि करा दिए, सौवा यज्ञ हो रहा था, खंडित हो रहा था, तो उसको पूरा करा दिए, बले कर यज्ञ छिद्र, बलि महाराज के यज्ञ की कमी को पूरा कर दिए, विप्रर सिभी सह अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ, वे लोग भी कहे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, सब पूरा हो गया। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी वामन भगवान के बारे में कहते हैं, ये क्या किए, ब्राह्मण लोग तो यज्ञ किए, और भगवान एवं बलेर महिम राजन भिक्षित्वा वामनो हरि ददौ भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवं जत परहृतम। हे महाराज, इस प्रकार वामन हरि परम मनोहर भगवान श्री वामन देव बलि महाराज से महिम भिक्षित्वा पृथ्वी की भिक्षा मांग करके, पृथ्वी को ही भिक्षा के रूप में मांग कर पूरा तीनों जगत के भूमंडल को भ्रात्रे महेंद्राय ददल, अपने भाई महेंद्र के लिए अर्थात इंद्र के लिए दे दिए। भगवान नहीं रखे, या भगवान की लीला देखिए, दूसरे अपने भाई के लिए भीख मांगे, माता अदिति के पुत्र हैं इंद्र भगवान, और अदिति के पुत्र भगवान भी हैं वामन देव, भाई के लिए दे दिए। जत परर हृतम, जो शत्रुओं के द्वारा बलि आदि दैत्यों के द्वारा हर लिया गया था स्वर्ग या सारा भूमंडल, दे दिए। तो वहां पर प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी भगवान को ही स्वामी बनाए, तीनों जगत का अभिषेक किए वहां पर, वहीं पर। यद्यपि भगवान उनको राज दे दिए इंद्र को, लेकिन भगवान का अभिषेक हुआ जुवराज पद पर। प्रजापति पतिर ब्रह्मा देवर्षे पितृ भूमि पहि दक्ष भृगु अंगिरो मुख्य कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादिते प्रीते सर्वभूत भवाय च लोकानाम लोकपाला नाम अकरोत वामनम पति, प्रजापति पति ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी प्रजापतियों के स्वामियों के पति हैं, प्रजापति पति प्रजापतियों के पति हैं, ऐसे ब्रह्मा जी देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ, पितरों के साथ और भूमि पर ही मनु महाराज आदि जुटे थे, कई मनवंतर के मनु लोग जुटे थे वहाँ, और दक्ष प्रजापति भृगु अंगिरा ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इन प्रधान ये लोग थे ब्रह्मा जी के पुत्रों में और समाज में, कुमारेण भवेन च, और चारों कुमार सनत कुमार और भगवान शिव, इनके साथ मिल करके सबसे अनुज्ञा लेकर के और सबने कहा हाँ 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 ठीक है ठीक, तो सब सबके साथ मिल करके सबके सहमति से ब्रह्मा जी ने भगवान वामन देव को लोका नाम लोकपाला नाम अकरोत पति, समस्त लोकों का लोकपालों का पति नियुक्त किया, भले इंद्र इंद्र पद पर थे लेकिन उनके भी मालिक भगवान बने, ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया सबके स्वामी के पद पर। अदित कश्यपस्य अदिते प्रीते, प्रजापति कश्यप जी को और माता अदिति के प्रीति के लिए उनकी इच्छा थी कि ये मेरा जो छोटा बेटा है सबसे, यही समस्त जगत का ईश्वर होना चाहिए, तो ब्रह्म इंद्र आदि से ऊपर अधिकार था सब तरह से, ब्रह्मा जी ने सब दिया विधि कश्यप जी और अदिति के प्रसन्नता के लिए और समस्त जीवों के योग क्षेम के लिए। भगवान बड़े कुशल हैं, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान हैं, तो यही जानते हैं कि दुनिया का कैसे पालन किया जाएगा सभी जीवों का, ये विचार करके ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपालों का और समस्त लोकों का पति नियुक्त किया। जिस समय ब्रह्मा जी पति नियुक्त किए तो उस समय दक्ष भृगु अंगिरा सनत कुमार आदि चारों भाई, भगवान शिव, देवता, पितर, मनु महाराज आदि सब उपस्थित थे, एक मनु नहीं कई मनवंतर के मनु वहाँ उपस्थित थे। विश्व के जो महान लोग हैं वे जानते हैं भगवान की महिमा, तो किसी विशेष उत्सव में वो जुट ही जाते हैं, भगवान अवतार लिए लीला किए थे सब लोग जुटे। तो प्रश्न होता है जब इंद्र पति हैं ही सबके पालक हैं तो भगवान वामन देव को क्यों बनाया गया, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वेदानाम सर्वदेवानाम धर्मस्य जसश्रिय मंगलानाम व्रतानाम च कल्पम स्वर्ग अपवर्ग, क्योंकि समस्त वेदों के पालन में, वेदोक्त धर्मों के आचरण करवाने में और समस्त देवताओं के पालन में, धर्म के पालन में, जस के पालन में, श्री के पालन में, मंगलों के पालन में, व्रतों के पालन में और स्वर्ग और अपवर्ग सबका पालन करने में कल्पम दक्षम वामनम, भगवान वामन देव दक्ष थे, उपेंद्र दक्ष थे। स्वर्ग में भगवान वामन देव चतुर्भुज रूप से रहते हैं, अपने विष्णु स्वरूप से ही, जो उन्हें उपेंद्र कहा जाता है। भिक्षा मांगने के लिए वामन हो गए थे, नापने के लिए त्रिविक्रम बन गए, बाकी वे रहते हैं चतुर्भुज रूप में इंद्र के साथ। ये भागवत में वर्णन है छठे स्कंध में। ये दक्ष कल्पम, कल्पम का अर्थ समर्थ, स्वर्ग को मेंटेन रखने में, अपवर्ग को किसको मुक्त करना है कैसे करना है, और समस्त मंगलमय व्रत या समस्त जस श्री धर्म देवता और वेद सबका पालन करने में, सबका निर्वाह करने में, योगक्षेम बहन करने में भगवान उपेंद्र समर्थ हैं, इंद्र नहीं, कहने का आशय सुखदेव गोस्वामी का। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको सबका पति बनाया, इंद्र आदि के ऊपर सबका। उपेंद्रम कल्पयान चक्रे पतिम सर्व विभूतये, उपेंद्र को पति बनाए, सबसे श्रेष्ठ बनाए ब्रह्मा जी ने। बनाए क्या, भगवान तो हैं ही, लेकिन लोक दृष्टि से भी, ये संसार का जो मैनेजमेंट था उस दृष्टि से भी सबसे हेड बनाए। सर्व विभूत है, सबके विकास के लिए, सबके हित के लिए भगवान को श्रेष्ठ बनाए। वास्तव में श्री भगवान कृष्ण ही समर्थ हैं कि सबको सुखी कर सकते हैं। मनुष्य को भगवान के इस विशेषताओं को समझना चाहिए, तो ब्रह्मा जी इसको समझकर भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ बनाया। तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब भगवान को राजा बनाया गया, सबका पति बनाया गया, समस्त देवताओं का, वेदों का, सबका, तो उस समय जितने भी जीव थे विश्व में सभी परम प्रसन्न हो गए। जय हो ब्रह्मा जी की भी जय बोल रहे थे और भगवान की जय तो बोल ही रहे थे। बहुत प्रसन्न हुए भगवान को राजा के रूप में देखकर। और इंद्र के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततस्त्विंद्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपालेर दिवम निम्ने ब्रह्मणाचार्य नमोदितः। तो उस यज्ञ स्थल से इंद्र अपने भाई को, छोटे भाई को, भगवान वामन देव को लोकपालों के साथ मिल करके और ब्रह्मा जी से अनुमोदित होकर के भगवान वामन देव को विमान से स्वर्ग ले गए, स्वर्ग में ले गए जहाँ रहना है भगवान को सदा के लिए। देवयान से, देवयान एक मार्ग है जिसको अर्ची मार्ग कहते हैं, देवताओं के मार्ग से ले गए, अथवा देवयान जैसे विमान जलयान होता है, देवयान जिसे देवता लोग चलते हैं, मनुष्य कभी वैसा विमान देख भी नहीं सकते, तो वैसे परम श्रेष्ठ विमान से ले भृगु कच्छ क्षेत्र से नर्मदा जी के किनारे से ले गए स्वर्ग। इंद्र भवन में इसका मतलब ये है, जो सरकारी भवन था ऑलरेडी इंद्र के लिए बनाया गया तो वहां ले गए, उनको आगे बैठा है तो पुरस्कृत विमान में भी सबसे आगे, बिजनेस क्लास में नहीं ले जाएगा तो फर्स्ट क्लास में ले जाएगा, सबसे श्रेष्ठ। और धक्का नहीं था विमान में, बहुत श्रेष्ठ लोकपाल लोग केवल बैठे थे, सबसे श्रेष्ठ इस विश्व के जो व्यवस्थापक हैं वे लोग बैठे थे, उनके साथ ले गए वामन देव को अपने धाम। उपेंद्र, ये इंद्र बहुत खुश हुए, बहुत आनंद में थे, क्योंकि प्राप्य त्रिभुवनम चंद्र, एक तो तीनों जगत उनको मिल गया भगवान की कृपा से, नहीं तो दैत्य लोग मारे थे, उन लोग मारे नहीं थे, भाग गए थे दैत्यों के डर से। अब बहुत खुश हुए, भगवान वामन देव के भुजा का आश्रय मिल गया इनको, वे रक्षा करने वाले थे। देखिए भगवान दोनों तरफ रक्षा कर, बलि महाराज की कहे कि मैं रक्षा करूँगा तुम्हारी, और उपेंद्र के साथ, इंद्र के साथ तो उपेंद्र बन करके हैं ही, तो इंद्र बहुत खुश हुए, उनको परम धन मिला, श्रिया परमया दुष्ट गत साध्वस, अब दैत्यों का असुरों का भय बिल्कुल चला गया इंद्र का। उधर भगवान के भुजाओं का आश्रय और उधर त्रिभुवन का राज धन, खूब मूदे बहुत प्रसन्न हुए, मोद में रहने लगे, खुशी में रहने लगे। ये कथा कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा सर्व कुमारश्च भृगुवाद्या मुनयो नृप पितर सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्चये। ब्रह्मा जी भगवान शिव, कुमार मतलब चारों कुमार, भृगु आदि मुनि, और पितर सर्वभूत पितरगण और सर्व जीव, सिद्ध लोग वैमानिक विमानों पर चलने वाले, ये सब वैमानिका सब विमान पर चल रहे थे। सुमहत कर्म तद विष्णु गायन तह परमाद्भुतम धिष्यानी स्वानी ते जगमु आदितिम च संसरे। सभी लोग जब जा रहे थे अपने अपने घर अपने अपने धाम में, तो सब भगवान वामन देव के चरित्र को ही गा रहे थे, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, गा रहे थे और माता अदिति की बीच बीच में प्रशंसा करने लगते थे, आहा धन्य है माँ अदिति, धन्य है उसका पयोव्रत जो भगवान को पुत्र रूप में पाई, सारे जगत के मंगल के लिए भगवान का यह अवतार हुआ, सब लोग सुखी हो गए। गायंती गायंत परम अद्भुतम, भगवान की परम अद्भुत वामन अवतार की लीला को गाते हुए जा रहे थे। कोई भी व्यक्ति दूसरी चर्चा नहीं कर रहा था, चाहे ब्रह्मा जी शिव जी सब वही चर्चा करते हुए गाते हुए जा रहे थे अपने समाज के साथ। सुमहत कर्म तब विष्णु, भगवान विष्णु का यह कर्म विश्व को नापना आदि महान कर्म है और बलि पर अनुग्रह और परम अद्भुत है, अलौकिक है। धिष्ण्यानी स्वानी तेज जगमु, अपने अपने घर चले गए, अपने अपने धाम में चले गए गाते हुए। गायंतः जगमु, गायंतः गए गाते हुए गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अदितिम च ससंसिरे, अदिति की प्रशंसा करते हुए सब लोग। वास्तव में एक अद्भुत स्त्री है माता अदिति, जिसने केवल 12 दिन व्रत किया और भगवान को अपने पुत्र रूप में पा गई। ये अद्भुत लीला है भगवान, अद्भुत कई प्रकार से है। एक तो पहले छोटा बौना ब्राह्मण बनकर आना और ऐसे झूठ बोलना कपट करना, ये भगवान की अजीब लीला है जो अद्भुत है। और फिर अद्भुत क्या है, अद्भुत ये है कि शुक्राचार्य जैसे व्यक्ति के हृदय में विपरीत भाव भर देना, ये भी अद्भुत बात। और नापना हुआ तो विशाल रूप बना करके नापे, भीख मांगे छोटे रूप से, लेना हुआ तो पूरा हाथ पैर फैला कर नाप ऐसे घूमने और देने वाले को बांध दिए और गाली दे रहे हैं, तुमने ठीक से दान नहीं दिया, जितना कहा था नहीं दिया, बलि को बांध दी। ये भी परम अद्भुत लीला है। उससे भी अद्भुतम लीला है कि बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। सब चीज अद्भुत है, अद्भुत है भगवान का। वास्तव में ये पुरुषार्थ, ये इनकी लीलाएं अद्भुत हैं। इंद्र से प्रेम करना, बलि से प्रेम करना, इंद्र से भी प्रेम है, अपने भाई के लिए दे दिए और उधर अपने को दे दिए बलि महाराज को, आत्मद हैं, उनके उनके सेवक बने बलि महाराज के भगवान। तो सब मिलाकर के परम अद्भुत लीला है। इन्हीं लीलाओं की चर्चा करते हुए भगवान ब्रह्मा भगवान शिव और मुनि जन जितने भी थे सब अपने अपने घर जा रहे थे विमानों से। विमान मतलब भगवान शिव तो नंदीश्वर से जा रहे होंगे, लेकिन वो विमान का भी बाप है, वो बहुत तेज चलता है जो जा रहे थे भगवान की कीर्ति गाते हुए जा रहे थे। यही है भक्त का स्वरूप, जहाँ भी जाता है भगवान का जस गाता रहा। और भक्त का जस दीति का अदिति का, अदिति की प्रशंसा कर रहे थे बीच बीच में कर रहे थे। जैसे एक भक्त गा रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी का सारा, श्रील प्रभुपाद जी का जस सारा जगत गाता है, उन्होंने कृष्ण को दिया, कृष्ण का जस तो सब गाते ही हैं, परंतु साथ में श्रील प्रभुपाद जी का जस गाया जाता है स्वाभाविक। तो अदिति की प्रशंसा कर रहे थे। तो तीन श्लोक इस कथा की महिमा का रह गया है, इसको मैं थोड़े देर बाद कहूँगा। थोड़े देर के लिए श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, आपके बोलने के पहले ही मैं बोलने लगा था अरे आए और टाइम तो बहुत कम है। तो टाइम फिक्स कर दीजिए बिल्कुल 2-3 महीना क्या से। चार श्लोक रह गया है भागवत का,
बलि महाराज का यज्ञ पूर्ण हुआ और आज ये कथा पूर्ण हो रही है, ऐसा कहते हुए मन तो बड़ा बोझिल है। ये सत्र में बलि महाराज का, बामन महाराज का चरित्र पूज्य गुरु महाराज ने बड़े दिव्य रूप से और अशेष रूप से श्रवण कराया है। हम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटिशा नमन करते हैं, वंदन करते हैं। महाराज जी ने ये निर्देश दिया था कि हर कथा के पश्चात अनुमोदन, अनुमोदन का मोद माने प्रसन्नता, अनु माने पीछे से, जो हमें हर्ष होता है वो व्यक्त करने की इच्छा होती है। तो अनुमोदन का क्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे एक तो निवेदन है कि आरती के पश्चात ही आप यहां से उठेंगे। आज इसी क्रम में सबसे पहले तो मैं आज अभिनंदन करता हूं जिन्होंने बहुत सहयोग किया है और वो यहां आई हैं, इस क्षेत्र की लोकल कॉर्पोरेटर श्रीमती जया भोई जी व उनके पुत्र दिलीप भोई जी यहां पर आए हैं और उनका बड़ा सहयोग है। हम उनका कर्तव्यमणि से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पधारे हुए सभी भक्तों का हम अभिनंदन करते हैं और आज मैं विशेष रूप से एक अभिनंदन करूंगा कि हमारे वृंदावन से जो आए हैं और इस कथा को आप जिनकी कृपा से बार पुनः श्रवण कर सकते हैं, पुनः देख सकते हैं, और जो बहुत परिश्रमशील हैं महाराज जी के
अभी बोल रहे हैं ना भगवान
जी
के
अभी
बोल रहे हैं कोई मंच करना है।
तो जो महाराज जी के सचिव हैं और सेवक हैं और बहुत परिश्रमशील हैं, वृंदावन से आए हुए नटवर बपू प्रभु जी का भी हम आगे कर रहे हैं। अनुमोदन प्रारंभ करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं और उसके पश्चात मैं आवाहन करूंगा। अनाउंसमेंट अंग्रेजी में इसलिए कर रहा हूं कि अंग्रेजी का ही कार्यक्रम रहेगा। सो देयर इज अनाउंसमेंट दैट ऑन 27th एंड 28th जनवरी देयर विल बी भीष्म कथा बाय हिज होलीनेस दंडी स्वामी भक्ति विश्रम माधव महाराज इन भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन गिरिराधा गिरधारी मंदिर। ऑन 27th एंड 28th देयर इज भीष्म कथा भिक्षु भक्ति विश्रम्भ माधव महाराज इन भक्ति वेदांत हॉल। दोज हु वांट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोग्राम दे कैन कॉन्टेक्ट हिज ग्रेस बनवाली प्रभु जी। देयर इज ऑल्सो ए उपासना यूथ फेस्टिवल ऑन 5th February संडे 5th February। सो ऑल द यूथ्स आर इनवाइटेड एंड द लेक्चर विल बी गिवन बाय हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु। सो ऑल यूथ आर इनवाइटेड एंड दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट इन एडवांस टू हिज ग्रेस बनवाली प्रभु जी। अब मैं आवाहन करता हूँ जो इस कथा के सूत्रधार हैं और जिनकी लगन और जिनके परिश्रम से ये कथा का इतना सुंदर स्वरूप बना है, ऐसे हमारे मंदिर के आरजीपी मेंबर और अध्यक्ष परम पूज्य हिज ग्रेस जगजीवन प्रभु जी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। एक बार स्वागत करें जगजीवन प्रभु जी। महाराज जी ने अभी अभी निर्देश दिया है कि अनुमोदन के क्रम में संक्षेप में और थोड़े समय में बोलेंगे, लेकिन आप अपनी इच्छा से
तो आप लोग बहुत आनंद में जो भागवत कथन आए महाराज के मुख से भागवत सुने भारतीय से तो बड़ी बड़ी सुने और प्रसाद ग्रहण किए, इसलिए धन्यता भाई आप लोग को ही है। आप लोग का हमें द्वारा ये कथा का सौभाग्य बड़ा है, तो इसमें कुछ मिस्टर नहीं है। तो मैं हरिदास प्रभु को बोलता है थोड़ा डिटेल्स धन्यवाद जो है हरिदास को बोलेंगे। तो श्री चारद महाराज की प्रभात महाराज की हमें धन्यवाद देता हूँ। ट्रस्ट जो और ये ग्राउंड को भागवत दशा के लिए यूज करने के लिए परिश्रम जो है कोई खंडा प्राप्त है। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत आभार पूज्य देव जीवन प्रभु जी का। पूज्य जीवन तो है ही, लेकिन इस कथा के जीवन तो निश्चित रूप से है। इस कथा में उन्हीं का बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत सरलता से उन्होंने अपने बात को कहा। हम बहुत आभारी हैं आपके इस प्रयास के प्रति। अब मैं आह्वान करता हूँ हमारे परम प्रिय श्रेष्ठ हरिदास प्रभु जी, जो मंदिर के जनरल मैनेजर हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ। हरिदास प्रभु जी थोड़े समय में आकर कथा का अनुमोदन करें।
वन चाहता करो व्यस्त उपास का प्रदान पावनो। तो यहाँ पर जैसे जगजीवन प्रभु जी ने बताया कि कथा का शोभा आप सब हैं। वक्ता कितना हो भी बोले, अगर श्रोता गर ना हो तो उनका साहस और धैर्य खत्म हो जाता है। महाराज इतने कथा से प्रसन्न नहीं है, जितना कि आप लोग आए हैं उससे प्रसन्न है। कथा तो संसार में चलता ही रहेगा और चलता आ रहा है, लेकिन साधारण रूप से देखने जाइए तो वहां पे भक्त बहुत कम मिलते हैं। लेकिन लीला रोड में आप लोग किधर आग घुमाएंगे उधर कोई ना कोई निहोटी जब करते हुए मिलेगा। हमारी आशा है महाराज जी इस बात को जानते हैं। हमारी इच्छा थी कि ऐसा भव्य भागवत सप्ताह का निर्माण किया जाए जिससे लोग कल्याण हो और हम लोगों का भी कल्याण हो। ये कुछ भी नहीं है, ये 100 में से सिर्फ 5% है। हमारा लक्ष्य 95% की तरफ है, जो बहुत कुछ ही बिंदु में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जब तक भक्तों का आशीर्वाद नहीं होगा हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कृपया करके महाराज का उत्साह तभी बना रहेगा जब आप लोगों का उत्साह इसी तरह से बना रहे। प्रसाद की कमी नहीं है, सिर्फ उत्साह की कमी है। लेकिन यहां देखने से पता चलता है 95% जो मेरा उत्साह है वो पूरा हो जाएगा। बहुत से भक्त इसमें हैं जो सहयोगी हैं, शेष करके हमारे बीच रास मंडल प्रभु हैं, देवी कृष्ण प्रभु हैं और उनके टीम, और आप लोगों को नचाने और गाने वाले हमारे बीच में गुड़ागेश प्रभु हैं, उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दें। गुड़ागेश प्रभु सामने से नहीं आते, पीछे से काम करते हैं। उनका सर हमेशा झुका रहता है क्योंकि जो फल जिस वृक्ष में फल लगा होता है ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ होता है। तो मेरा इशारा आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी मैं अपने वाणी को इतना ही गौर पर विराम दूंगा। बोलने के लिए तो बहुत है लेकिन अभी विशेष करके बहुत भक्त बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज के चरणों में कोटि सर प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए इस हरिदास प्रभु जी का। उन्होंने कहा कथा तो चलती ही रहती है, अभी यहाँ सूरज का अस्त हो गया था, जिस सूरज का उदय हो चुका है, पूज्य महाराज जी के कथा अनवरत रूप से चलती रहती है और महाराज हर परिवेश में और किसी भी स्थान पर कथा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो लेकिन बात तो ये है कि हमको कथा सुनने को कहाँ से मिलेगी, सारी हमारे मन में यही भावना है कि महाराज जी की कृपा बनी रहे और पुनः पुनः कथा हमें सुनने को मिले। अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्री धाम वृंदावन से आए हुए श्याम सुंदर प्रभु जी आए और अपना अनुमोदन करें। श्याम सुंदर प्रभु जी संस्कृत के बहुत विद्वान हैं और इस्कॉन में वरिष्ठ क्रम के भी आचार्यगण आपसे संस्कृत का विचार करते हैं। श्याम सुंदर
कुर्सी ला कर रख देना चाहिए, खड़ा होकर बैठने की आदत, बोलने की आदत नहीं। ठीक है, दो तीन मिनट बोलना है ज्यादा नहीं।
हम आप सबके चरणों में नमन पूर्वक अपना अनुमोदन प्रस्तुत करते हैं। अनुमोदन का मतलब है जिस चीज से प्रसन्नता होती है उसको अभिव्यक्त करना। हमारे मन में श्रीमद् भागवत को सुन करके और आप लोगों के महती एकाग्रता को एक जगह झुकने को देख करके अतिशय आनंद हो रहा है और महाराज जी की और भगवान की मैं कृपा मानता हूँ कि हाँ मैं आ करके और श्रीमद् भागवत की कथा का आस्वादन किया। श्रीमद् भागवत हमारे कल्याण के लिए बनाया गया है और इसमें भगवान की कथा दी गई है, भगवान के विषय में सब बातें बतलाई गई है। इस कथा में हम लोगों ने देखा कि भगवान वामन देव परस्पर के महाशत्रुओं बलि महाराज और इंद्र महाराज दोनों के परम प्रिय हैं और दोनों को पूरा पूरा सुख दे रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी को भी उन्होंने तृप्त कर दिया। भगवान ही ऐसे हैं जो सबको तृप्त कर सकते हैं। उन भगवान का हमें जीवन में आश्रय लेना चाहिए और मैं अक्षय तृप्त हूँ। मैं ये प्रभु जी ने कहा कि भागवत और संस्कृत को जानने वाले हैं तो हम जानने वाले क्या हैं, लेकिन जब महाराज जी की कथा सुनते हैं तो उस समय मालूम पड़ता है कि वो भागवत में ही ये चीज है और नया नया अनुभव होता है। तो आप लोग इस कथा को चलाते रहिए और थोड़ा मेरी जिज्ञासा हो रही है कि अगले बार कौन सी कथा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय श्याम सुंदर प्रभु जी वृंदावन से। अभी से ही हमारे मन में भूख पैदा करके चले गए हैं। विशेष रूप से मैं कल के कार्यक्रम की आपको सूचना देना चाहता हूँ। कल जुहू में राधा रास बिहारी मंदिर का रथ यात्रा कार्यक्रम है और 3 दिन का हरे कृष्णा उत्सव है। कल 1 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी, 1 बजे भगवान पधारेंगे और 1:30 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी और 3 दिन का हरे कृष्ण उत्सव है लोखंड वाला गार्डन। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप सभी रथ यात्रा में भाग लें और पूज्य महाराज जी का 14 तारीख को संडे को प्रवचन है प्रातः काल में, और संडे के दिन तो मैं चाहता हूँ आप सभी हरे कृष्णा उत्सव में भाग लें, और जिन्होंने दुर्गाकेश प्रभु जी के कीर्तन का दर्शन करना है सही मायने में वो कल जाए धूम में, और आप देखेंगे दुर्गाकेश प्रभु का उद्दाम कीर्तन और आप सबका उद्दाम नृत्य। अब मैं प्रार्थना करता हूँ वृंदावन से आएंगे परम श्रद्धेय श्रेष्ठ वृंदावन चंद्र दास प्रभु जी आकर अनुमोदन करेंगे। परम श्रद्धेय वृंदावन चंद्र दास
जो विषय से ऊपर
ब्रह्म सुख में ली या भगवान के सेवा में ली व्यक्तियों के लिए भी मनोरम है। शिव जी का तत्काल उदाहरण देते हैं, यह देव देव शिव जी के विषय में कह रहे हैं कि वे देवताओं के भी पूज्य हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वे बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो बहुत सार सम्मान करते हैं इसलिए उसको मस्तक पर धारण कर ले। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि धन है ऐश्वर्य है तो बहुत चीज का संग्रह कर ले, हो सकता है कि उसी प्रवृत्ति के चलते वे गंगा जल को भगवान के चरण भवन को भी मस्तक पर धारण कर लिए, लेकिन कहते हैं नहीं गिरी सब उनमें कोई संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, ये तो जंगल में शयन करते हैं। फिर भी कोई प्रश्न कर सकता है, हो सकता है भाई कि शिव जी उसको मस्तक पर धारण करते हैं क्योंकि वे हलाहल विष का पान किए हैं, उनको गर्मी की अनुभूति होती होगी, उनको हौल होता होगा, लेकिन फिर कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी आवश्यकता से धारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर चंद्रमा ही पहले से है और चंद्रमा के किरणों से शीतलता का स्राव हो रहा है, अमृत का स्राव हो रहा है, वे पूर्ण शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उस चरण भवन को अपने मस्तक पर धारण करते हैं पर्याच भक्तिया केवल भक्ति के कारण केवल श्रद्धा के कारण। तो इस प्रकार जिनका विषय में कोई आसक्ति नहीं है वे लोग भी गौरी महाराज के पैटर्न पर भगवान की अर्चना चाहते हैं। तो समय कम है तो और भी भागवत में उदाहरण है, जैसे अखरूट जी का आप नाम जानते हैं, अखरूट जी जिस भावना में है और जिस भावना से कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी यह टिप्पणी दिए हैं कि तेहम भृतान यहाँ पर जिस विचारधारा में अखरूट की है तो देहधारियों का यही प्रयोजन है, यही अर्थ है देह धारण करना का। वैसे अखरूट जी भी बलि महाराज जिस पद्धति से भगवान की अर्चना किए उसके आकांक्षी है। आप जानते हैं जब अक्रूर जी गोकुल से मथुरा आए तो भगवान को अपने घर में ले जाने के लिए प्रार्थना करने लगे, भगवान कहे कि आप जाइए अपने घर हम बाद में आएंगे, क्योंकि ना ऐसा नहीं होगा मैं आपका भक्त हूँ और आप भक्त वत्सल है तो मैं इच्छा को पूर्ण कीजिए और अगर चया मना गए हैं आप चलिए साथ हमारे घर चलिए और आप चिंता मत कीजिए हमारे घर में पर्याप्त प्रसाद और रहने की व्यवस्था है। मानो भगवान ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमारे बड़े भाई हैं और ग्वाल बाल हैं और फिर तुम मुझको कह रहे हो, तो कहने की ऐसी बात नहीं है अपने बलराम जी के साथ चलिए ग्वाल बालों के साथ चलिए, उसके आगे में कह रहे हैं कि उन्हीं पाद रज सा अपने चरण रज से हमारे गृह को पवित्र कीजिए, हम लोग गृहमेदी है हमारा जीवन हिंसा में देखता है तो हमारे घर को पवित्र कीजिए। ये सब करें कि आपके चरण धोन से देवता पवित्र हो जाएंगे प्रसन्न होंगे पितर प्रसन्न होंगे, तो मानो भगवान कह सकते हैं कि ठीक है भाई तो लाओ गमछा चरण रज धो छाल करके झार करके ले जाओ घर में छिड़क देना मंडलों में धो करके ले जाओ छिड़क दो, लेकिन कहते हैं कि नहीं हम बलि के पैटर्न पर आपका स्वागत करना चाहते हैं। वे कहते हैं औरी क्या निर्जुगल आपसे श्लोक बलि महान आपसे चरण जुगल का भ्रमण करके श्लोकीय महान जिनकी कीर्ति बहुत फैली हुई है ऐसे लोगों में भी बलि महाराज महान हुए, उसका कारण है कि आपको अपने यज्ञ स्थल पर अपने हर में आसन पर बैठा करके चरण भूल की, तो अखरूट जी की यही वांछा है कि हम वैसे आपका स्वागत करना चाहते हैं। इस प्रकार हम यह कह रहे हैं कि बलि महाराज जिस प्रकार वामन देव का स्वागत किए तो विषय से ऊपर जो व्यक्ति हैं मुक्तात्मा है उनके लिए भी आकर्षण का विषय है। इस प्रकार यह प्रसंग बहुत सुंदर लगा और इस प्रसंग को पढ़ करके मन से विषय का आवेश कम हुआ, लेकिन इस आयोजन के विषय में तो हम यह कहेंगे ये कथा फल रही है, यह बलि महाराज का जो चरित्र है, उनका जो पूजा पद्धति है, वह मुक्तात्माओं को अच्छा लगे। फिर यह जो आयोजन है, तो हम जैसे विषय से भरे हुए व्यक्तियों को भी बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार यहाँ शांतिपूर्ण कथा आप लोग श्रवण किए और किस ढंग से प्रसाद की व्यवस्था की गई, तो यह सबके लिए एक आदर्श जैसा प्रतीत हो रहा है और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा ही आयोजन और जगह भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। मैंने कहा था वृंदावन चंद्र प्रभु जी संसार की चर्चा तो बिल्कुल करते ही नहीं, कभी नहीं करते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, हमेशा मौन रहते हैं, लेकिन भगवान की कथा हो तो भाग बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वृंदावन चंद्र प्रभु जी का। इसी क्रम में अभी अभी मुझे दो सूचनाएं बहुत सुंदर प्राप्त हुई हैं। पूज्य महाराज जी का अभी तो भुवनेश्वर में कथा है, 24 जनवरी से जो भुवनेश्वर जाना चाहते हैं उनको वहाँ व्यवस्था दी जाएगी, और 13 से 16 फरवरी को सूरत में कार्यक्रम है पूज्य महाराज जी का, 13 से 16 फरवरी। और उसमें जो भी गृहस्थ आश्रम से व्यक्ति जाएंगे उनको वहां ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी, और ब्रह्मचारी जो जाएंगे उनको आने जाने का भाड़ा भी दिया जाएगा। तो सूरत के अंदर बहुत सुंदर कार्यक्रम है, 13 से 16 फरवरी को सूरत में बहुत सुंदर उपहार आपको ये प्राप्त हो रहे हैं कृपा के। 10 फरवरी को वैशाली नगर में कार्यक्रम है डॉक्टर जेपी यादव जी, जय अम्बे नर्सिंग होम के डॉक्टर यादव जी के यहाँ, बोरीवली से 462 नंबर की बस जाती है, लास्ट स्टॉप में उतर के आप जा सकते हैं 10 फरवरी को और 13 से 16 फरवरी को सूरत में। अब मैं आगे हमारे भुवनेश्वर से आए हुए श्याम बिहारी प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ, कृपया आपके अनुमोदन करें। बाकी सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत संक्षेप में आप अपना अनुमोदन रखें, फिर महाराज जी भी अभी 4 श्लोकों की व्याख्या करके फिर आरती होगी। श्याम बिहारी प्रभु जी भुवनेश्वर से।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नमः। नमस्ते प्रभुपादाय देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद।
कृष्णा क्या बोल रहे हैं, निवेदन करना है, 2 मिनट बोलना है तो कथा चालू करना है।
हरे कृष्ण रुखा मगर
नहीं, क्षमा नहीं कर रहा हूँ, ये सब नहीं बोलना चाहिए।
कृपा सिंधु
हरे कृष्णा, क्यों दिए इनको, क्या जरूरत थी है? सीधा बोलना चाहिए ना, इस प्रकार मंगलाचरण करना।
चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य बोले, गंगा जमुना प्रायग नारीला डुबाई थे, प्रभु डुबाईले कृष्ण प्रेम और बनिया थे। चैतन्य प्रायग में गंगा और जमुना में की दो नदी है, जहाँ पर की प्रायग में मायावती बहुत है, गंगा और जमुना मिलकर के प्रायग को नहीं डुबा पाया। मीरा रोड में जो कथा हो रहा है परम पूज्य रामिंद गुरु महाराज का, सारी भागवत सुनकर इतना देखकर के मेरे को खुश लगे कि कितना श्रद्धालु व्यक्ति कृष्ण भागवत सुनने के लिए पागल होकर की भगवान का कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। इसलिए कहने का अर्थ होते है कि चैतन्य महाप्रभु बोले, गंगा जमुना नारीला डुबाई थे, प्रभु डुबाई ले कृष्ण प्रेम बनाते। मायावती जो होते ना, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम बोल करके मायावती को पार किए। इसलिए भागवत में लिखा हुआ, चैतन्य चैतन्य लिखा हुआ कि कृष्ण प्रेम मिलित भावे। हरे कृष्ण।
बेचारे कह नहीं पाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती ने प्रयाग को नहीं डुबाया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम की बाढ़ से डुबा दिए प्रयाग को।
बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बिहारी प्रभु जी का। एंड इफ महामुनि दास जी हु केम यस्टरडे फॉर दिस अनाउंसमेंट, इफ ही इज हियर ही कैन कॉन्टेक्ट मी। विजय माधव प्रभु जी हैज गिवन सम डोनेशन, इट इज विद मी एंड आई विल हैंड ओवर टू हिम। इफ महामुनि दास प्रभु और एनी ऑफ हिज एसोसिएट इज हियर, ही कैन कॉन्टेक्ट मी। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परम प्रिय और जो कनाडा से सपरिवार आए हैं और महाराज जी की कई कथाओं को सुनने की उनकी प्रबल इच्छा है और भुवनेश्वर और भी जगह जाएंगे, हमारे प्रिय अनादि गोविंद प्रभु जी जो आए हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। उनसे प्रार्थना करता हूँ अगर वो अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो मैं ट्रांसलेट करूँगा।
हिंदी
हरे कृष्णा।
कल महाराज भागवत कथा में बताए थे कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रय लेना चाहिए और महाराज ने एक श्लोक बताए भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मन यदि मम नमस्कुरो मम एवा इष्यसे सत्यक्ति प्रति जना प्रियोसी। में हर समय मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मेरा ओबीएंसेस भी करो। अगर आप ये करेंगे तो आप जरूर मेरे धाम आएंगे। तो अगर हम सब भक्तों को महाराज को एडवाइस देंगे तो हमारा जो गोल है कि भगवान कृष्ण के प्रताप करें वो पूर्ण हो जाए, इसमें कोई संस्था नहीं। और मैं ये भी बोलना चाहते हैं जो यहाँ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत तरह से सब चीज प्रबंध किए हैं, एक एक डिटेल किए हैं कि अच्छा प्रसाद बैठने के लिए सुख और जितना जूते है सब जगह बनाए हैं, तो ये सब करना बहुत समय लगता है। मैं उन्होंने धन्यवाद देता हूँ और मैं सब भक्तों लोगों के बहुत धन्यवाद देते हूँ कि मेरा जो यहाँ पर रहने के लिए 6-7 लोग हैं वो बहुत आनंद था। मैं आया हूँ मेरे पत्नी और मेरी बेटी के साथ, मैं आप लोगों के जिंदगी भर आप लोगों के भुला नहीं सकते हैं। आप लोगों के कारण ये कथा और सफल हो गया है। हरे कृष्ण।
आभार को हम अनादि गोविंद प्रभु जी का व्यक्त करते हैं जो इतनी दूर से आए हैं और उन्होंने बड़े सच्चे हृदय से अपनी अनुमोदन को प्रकट किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। आखिरी अनुमोदन है इस समय। मैं उनको बुलाने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया था ये एक फार्म है और ये फार्म कुछ लोग भर सकते हैं। ये मंदिर की सेवा का एक फार्म है, ये श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर, ये बम्बई में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है मीरा रोड का और बहुत सुंदर यहाँ का कार्यक्रम और वैष्णव सेवा और इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो ये सेवा का एक फार्म है। 11,000 रुपए देकर आप एक दिन की सेवा ले सकते हैं, 365 दिन में एक दिन की सेवा आप ले सकते हैं और इस फार्म को भरकर फिर आपको सपरिवार ये ठहरने के लिए और व्यवस्था करते हैं, आपका बहुत सत्कार करते हैं, भक्तों का सानिध्य मिलता है और भगवान का प्रसाद और साथ में कुछ उपहार आपके परिवार के लिए नियमित रूप से भेजे जाते हैं। तो ये एक मेंबरशिप का फॉर्म है योर सेवा डे इन हरे कृष्णा धाम। कि हरे कृष्ण धाम इसी तीर्थ से कम नहीं है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये सेवा का एक अवसर है, मात्र 11,000 रुपये सेवा देकर हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो इस फार्म के बारे में जिनको जानकारी प्राप्त करनी है वो हमारे जनरल मैनेजर श्री हरिदास प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं, माता जी की और हमारे प्रभु जी की, या फिर हमारे अध्यक्ष जगजीवन प्रभु जी से संपर्क कर सकते। अब मैं हैदराबाद से आए हुए ये आखिरी अभी अनुमोदन है, इसके पश्चात पूज्य महाराज जी का शेष प्रसंग महाराज जी अनुमोदन करेंगे। हैदराबाद से आए हुए श्याम सुंदर दास प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ। फोटो बहुत लेते रहते हैं, सबकी फोटो इन्होंने सबको कैद कर रखा है आप अपने पास, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि
श्री श्री কৃষ্ণ বংশী সে সমস্ত গোপীরা ধ্বংসে বলে পহলে আমি
माँ गंगा के तट पर श्रील सुखदेव गोस्वामी जो भागवत के पूर्ण ज्ञाता हैं, अपने पिता की कृपा से, विद्यास देव की कृपा से महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। गंगा जी के तट पर सुखताल में कथा चल रही है, वहाँ पर महाराज परीक्षित को फिर संबोधित करते हुए इस कथा के, भगवान वामन देव के प्रसंग के प्रशस्ति को, इसकी महानता को व्यक्त कर रहे हैं। सर्व में तन्मया ख्यातम भवतः कुलनंदन गुरुक्रमस्य चरितम श्रोत्रीणाम अघमोचनम। हे अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले, अपने कुल के सुख को बढ़ाने वाले महाराज परीक्षित के कुल के कौन लोग थे? इमीडिएट अभिमन्यु इनके पिता थे और अर्जुन इनके खास दादा थे, पितामह, और महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव भी इनके पितामह थे। यह इमीडिएट कुल था महाराज परीक्षित। भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त जो कृष्ण की लीला में साथ में रहे, उस अर्जुन के वंशधर हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुल नंदन, तुम्हारे पितामह आदि तो अपने आप ही भक्ति के आनंद में सराबोर रहते हैं, लेकिन परीक्षित जो तुम इस प्रकार से श्रवण कर रहे हो कृष्ण कथा का, इससे तुम्हारे कुल का और अधिक आनंद बढ़ा है। जब याद करते होंगे महाराज युधिष्ठिर के, हमारे कुल में भागवत सुनने वाला एक इतना बड़ा व्यक्ति हुआ, राजा हो करके भी सब कुछ छोड़कर भागवत सुन रहा है, कृष्ण कथा सुन रहा है, धन्य हो परीक्षित, तुम कुल का आनंद बढ़ाने वाले हो। तो भवतः आपसे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतत् सर्वम मया आख्यातम, आपसे मैं यह कथा कह दिया। यह सब का मतलब कि इस प्रसंग को, वामन देव के चरित्र को, बलि महाराज के उत्कर्ष को मेरे मन ने जितना ग्रहण किया है, सर्वम का अर्थ है जितना मैं पकड़ा हूँ, जितना मेरे बुद्धि ने इसको पकड़ा है उतना मैं कह चुका है। वैसे तो भगवान की लीला अनंत है, भगवान शेषनाग भी नहीं कह सकते, लेकिन हमने जितना इसको समझा तो सर्वम एतद् मया आख्यात, हमने इसको, इस कथा को पूरा पूरा कर दिया। गुरु क्रमस्य चरित, त्रिविक्रम श्री भगवान की लीलाएं, वामन देव की लीलाएं, श्रोत्रीणाम अघमोचनम, श्रोताओं के समस्त दुरित को, दुर्भाग्य को और उनके पाप को ये ध्वस्त कर देता है। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्रोत्रीणाम अघमोचनम, अघ कहते पाप और मोचनम कहते मुक्त कर, तो दुरित कहते हैं। दुरित का अर्थ होता है दुर्भाग्य, बैड कर्म। हम लोगों के कर्म पता नहीं क्या क्या है, भूल चूक हुई है बहुत, लेकिन किसी के भी जीवन में अगर पाप हुआ होगा किसी प्रकार का, केवल भगवान की इस कथा को सुनने से सारा पाप समाप्त हो जाएगा। श्रोत्रीणाम अघमोचनम, यह कोई कथा की प्रशंसा इसलिए नहीं की जा रही है कि लोग सुने, नहीं, सुनने का यह सहज प्रभाव है। अघमोचनम, जितना भी दुख होने वाला होगा भविष्य में किसी कर्म के कारण, पूर्व जन्म के कर्म के कारण या इस जन्म के कर्म के कारण कोई दुख होने वाला होगा, विपत्ति होने वाली होगी, किसी भयंकर आपत्ति में व्यक्ति पड़ने वाला होगा या पड़ा है, तो वो उसका संकट निश्चित नष्ट हो जाता है, सदा के लिए जीवन उसका धन्य हो जाता है इसको सुनने से। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि जब आप कहते हैं एतत् सर्वम मया ख्यातम, ये सब मैंने कह दिया, इसे सिद्ध होता है कि और भी बहुत सी कथाएं हैं भगवान की, और भी बहुत से चरित्र हैं, तो उसको निःशेषेण कथा पूरा पूरा कहिए, पूरा पूरा कहिए और भी कथाओं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज वशिष्ठ मुनि ने कहा है, जो सुखदेव गोस्वामी के ही वंश के थे पहले, उन्होंने कहा है कि पारम महिम नवरु विक्रमतो ग्रणानो यह पार्थिवान बिम में सर अजान से मारते हैं। यदि कोई व्यक्ति महान लीलाशील भगवान विष्णु के कृष्ण के महिमा को महिमा का वर्णन करके उसको शेष करना चाहता है पूरा पूरा कहना चाहता है तो इसका मतलब कि वह पृथ्वी के परमाणुओं को गिन चुका है। यह ऐसा होता है वो पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को यदि डस्ट बनाया जाए किसी तरह से पीस करके पूरा मशीन में आटा बनाया जाए तो उसके परम अणु को परम छोटे कण को लगता है कि वो गिन चुका है तब साहस करेगा कि भगवान विष्णु के महिमा का हम वर्णन कर सकें। इसका मतलब है कि जैसे पृथ्वी के परमाणुओं को गिनना असंभव है उस प्रकार से भगवान की महिमा उनके सौंदर्य दया लीला आदि को गिन करके वर्णन करके शेष कर पाना असंभव। इसको कौन कहा है? वेदों के पारदर्शी विद्वान श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा है कि किम जायमान उत्जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत दृग ऋषि पुरुषस्य जस्य। परम पुरुष श्री विष्णु के विषय में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है जो वेदों के पारदर्शी विद्वान हैं मंत्र दृष्टा, उन्होंने कहा है कि किम जायमान उत्जात उपैति, न आज तक कोई माई का लाल जन्म लिया है न आगे लेगा जो विष्णु की महिमा का वर्णन करके शेष कर दे। जायमान और जातक और न जन्मा है न जन्मेगा न है न पहले कोई जन्मा है और न आगे कोई जन्म लेगा जो भगवान विष्णु की लीलाओं को चरित्र को महिमा को कह करके और शेष कर दे। अनंत लीलाएं हैं भगवान की, उनकी अनंत महिमा है, अद्भुत चरित्र है, कोई नहीं शेष कर सकता है। इस प्रकार की बात श्री वशिष्ठ जी ने कहा है। एक वैदिक मंत्र है जिसको प्रभुपाद जी उद्धृत किए हैं, उसी का अर्थ यहाँ दिया गया है। जायमान उत जात, जातक अर्थ जो जन्म ले चुका है, और जायमान मतलब जो इस समय जन्म ले रहा है चाहे आगे लेगा। तो सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं हुआ, चाहे वो ब्रह्मा जी हों चाहे भगवान शिव हों या शंकरादिक, स्वयं भगवान विशेष नाग भी भगवान कृष्ण के विष्णु के महिमा का पार नहीं पा सकते हैं, वर्णन करके शेष नहीं कर सकते। पर हमारी बुद्धि ने जितना हमको हमारी बुद्धि ने इस लीला को जितना पकड़ा, इस लीला को एक तक इस चरित्र को मैं आपसे कह दिए, तो उनकी अशेष महिमा को कौन कह सकता है। अब कहते हैं य इदं देव देवस्य हरे अद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितं श्रृण्वन् जाति परां गतिं। और कोई भी व्यक्ति देवाधिदेव देवताओं के भी परम आराध्य भगवान हरि के जिनका अद्भुत कर्म है इस अवतार चरित को सुनता है, श्रृण्वन् भवति इति शेषः, जो व्यक्ति सुनता रहता है इस वामन चरित को सजाति परमाम गति पराम गति, वह पराम गति भगवत संबंधिनी गति पार्षद गति अर्थात वैकुंठ प्राप्त करता है केवल सुनने से। श्रवण ये जीव की परा गति है, परम गति है। जीव भटक रहा है 84 लाख जोनियों में, लेकिन सौभाग्य से उसे मनुष्य शरीर मिले और मनुष्य शरीर में भगवान के इस अवतार चरित्र को सुनने का मौका मिले तो उसके लिए वैकुंठ प्राप्त होना निश्चित है। श्रवण और ये उपलक्षण है, समझ लेना चाहिए कि गायन और स्मरण, जो इस लीला का स्मरण करता है वो भगवान का धाम प्राप्त करता है, या इसको गाता है वर्णन करता है वो भगवान का धाम प्राप्त करता है, और जो श्रीणमन सुनता है। और भी बात कह रहे हैं कि यह अपने आप में कितना पूर्ण चरित्र है, कितना सौभाग्य से पूर्ण है। क्रियमाणे कर्मणि इदम दैवे पत्रेथ मानुषे जत्र जत्र अनुकृत्य तत्त्वे संस्कृतम विदुर। देखा गया है कि मनुष्य समाज में कई प्रकार के लोग उत्सव करते हैं, जैसे दैव उत्सव होता है, देवताओं के की पूजा, देवताओं के लिए यज्ञ, या भगवान की पूजा, भगवान के लिए यज्ञ, तो महोत्सव करते हैं, उनको दैव यज्ञ कहते हैं, महोत्सव, दैव महोत्सव, भगवान के बीच के लिए महोत्सव और चाहे देवताओं के लिए, और मानुष महोत्सव। मनुष्य समाज में कई प्रकार के महोत्सव होते हैं, इसको मनुष्य कर्म कहते हैं। तो महोत्सव में है जैसे जन्म का महोत्सव, बर्थडे का महोत्सव, या विवाह का महोत्सव, ये सब मुख्य महोत्सव हैं। और पितरों के लिए महोत्सव किया जाता है, श्राद्ध आदि। तो इतना महान यह प्रसंग है, इतना परिपूर्ण है और सारी कमियों को पूरा करने वाला है कि कोई व्यक्ति कोई उत्सव कर रहा हो, जन्मदिन मना रहा हो, या विवाह का उत्सव कर रहा हो, या देवताओं का यज्ञ कर रहा है, या भगवान का यज्ञ कर रहा है, या पितरों का, तो जहाँ भी इसका पाठ कर दिया जाता है इस प्रसंग का, जत्र जत्र अनुकृत्य, तो ये इसकी कथा अगर हो जाए उत्सव में, तत् तेषां सुकृतं विदुः, तो विद्वान लोग कहते हैं कि उसका वो कार्य पूर्ण सफल माना जाता है। उत्सव या देवताओं का आराधन, ये पितरों का तर्पण, ये पूर्ण कर देता है। जहाँ भी इसका कीर्तन हो जाए, केवल पाठ भी हो जाए, तो वो कर्म पूर्ण सफल माना जाता है। सारे कर्मों की कमी को ये पूरा कर देता है। उत्सवों का ये प्राण है, ये कथा का श्रवण कीर्तन, यही सबसे बड़ा उत्सव है वास्तव में। अन्य समस्त उत्सवों को ये पूरा करता है। अगर कोई कमी रह गई, कुछ हो गया, तो केवल इसका पाठ किया जाए, इसकी कथा की जाए, तो सब कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता। तो ये दुरित का कर्म बंधन को हरने वाला है। अघ का अर्थ कर्म बंधन, बुरे कर्मों का फल। कोई व्यक्ति बहुत भारी केस में भी फंसा हो, वो इसका पाठ करे तो वह उस केस से निश्चित मुक्त हो जाएगा। ये इसे दुरित कहते हैं, भविष्य। मनुष्य अनेक झंझटों में पड़ा है, सब अपने कर्म का फल होता है, अपने गलती का परिणाम होता है, लेकिन इस प्रसंग को सुनने पर, बोलने पर, या स्मरण मात्र करने पर कोई भी दुरित नहीं रहता है, और भगवान का धाम मिलता है। और अन्य भी जो मनुष्य समाज में फेस्टिवल होते हैं, देवताओं के लिए होते हैं, पितरों के लिए होते हैं, विवाह देते हैं, तो सब सफल माना जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपसे ये वामन भगवान का चरित्र कह दिया। अब श्री सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कहते हैं कि आगे क्या सुनना चाहते हैं। इतना तृप्त है मन भगवान का, सुखदेव गोस्वामी का मन इतना तृप्त है, इतना तृप्त है। श्याम सुंदर दास कह रहे थे, हम तृप्त हो गए, और सब लोग तृप्त हो गए, तो सुखदेव गोस्वामी रुक गए। अब महाराज स्वयं ही प्रश्न किए, तब फिर चालू कर रहे हैं 24वां अध्याय। इस प्रकार यह प्रसंग भगवान का चरित्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना हुआ, बोला हुआ, पूरा हुआ। और अब आप सब श्रोताओं के हृदय में अवश्य श्री वामन देव बसे होंगे, बलि महाराज के विचार, प्रहलाद महाराज के विचार, और सब कुछ यही जीवन का फल है। और वैसे अनुमोदन करने के लिए हमारी तो इच्छा रहती है कि बहुत लोगों को अवसर मिले, माताओं को भी अवसर मिले, पुरुषों को, बच्चों को, सबको, लेकिन हम लोग तो काल के अधीन हैं, समय नहीं रहता है। इच्छा होते हुए भी हम लोग समय नहीं दे पाते, लेकिन आपके द्वारा हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। कथा का अनुमोदन करना होता है, हमारा नहीं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अनुमोदन यही है कि आप आ करके शांति से, प्रेम से सुने इस कथा को, यही सबसे बड़ा आदर है, मैं मानता हूँ। हमें अपना अवसर दिया भगवान के कथा के वर्णन का, यही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा आपका समादर है, आपका अनुमोदन है। और मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान के आशीर्वाद की कामना करता हूँ आपके लिए कि आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे, भक्ति बनी रहे। और उन लोगों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपना शरीर, अपना वचन, अपना धन लगाए। बहुत सुंदर लगता था। मैं एक दिन प्रसाद पाने यहाँ गया, देखा काउंटर पर कैसे खड़े हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। इस तरह ये भगवान की डायरेक्ट सेवा है। मैं तो इस व्यवस्था को देख करके सोचने लगा कि बलि महाराज का ही यज्ञ है, इसमें भगवान पूजित हुए हैं। और बलि महाराज कौन हैं ऐसे कहना तो सेफ्ति नहीं होगी कि जगजीवन प्रभु ही बलि महाराज का पाठ कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत धन्यवाद और भगवान के आशीर्वाद की कामना इस भक्त के लिए मैं करता हूँ जो लगातार 3 वर्ष से ये प्रोग्राम कराते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत से जीवों को जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उनको कृष्ण से जोड़े, इस्कान से जोड़े हैं। और इनके सहयोगी हरिदास को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भगवान के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और श्री रास मंडल प्रभु, दिव्य कृष्ण प्रभु, मधुसूदन प्रभु, ये प्रभु त्रय को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने शुरू से ही बहुत बहुत सहारा दिया है। आयोजन जगजीवन प्रभु करते हैं लेकिन ये तीनों इसके ड्राइवर हैं, वाहक हैं चलाने में, बहुत अच्छा। तो सबको धन्यवाद और उन माताओं को जिन्होंने सेवा किया है और इस मंदिर के भक्त जन जो यहाँ 24 घंटे भक्त हैं उन सबको मेरा धन्यवाद और आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद जिन्होंने भक्तों के जूता को, पदत्राण को सुरक्षित रखा और दिया, सेवा किया। सबसे बड़ी सेवा तो वही है वास्तव में, वैष्णवों के पदत्राण, वैष्णवियों के पदत्राण को, जूता को छूना भी एक भाग्य की बात है। मैंने सेवा किया और सभी भक्त कहते हैं कि प्रसाद की बहुत सुंदर व्यवस्था हुई, बहुत सुंदर व्यवस्था हुई। और प्रसाद की व्यवस्था के साथ साथ इस आयोजन करने वालों का व्यवहार, उनका वचन और भी बहुत मधुर रहा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सब तरह से श्री श्री राधा गिरधारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने चरण में ऐसा सुयोग देते हैं हम सब भक्तों को अपने विषय में सुनने का, अपनी लीलाओं को सुनाने का। इसके लिए मैं जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को और बलदेव जी को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि अपना नया मंदिर शीघ्र बना लें, कृपा करें। इतने भक्त बढ़ रहे हैं, भगवान को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करें, किसी के हृदय में प्रेरणा करें, जैसे तैसे मंदिर का निर्माण शीघ्र हो। और भगवान तो करेंगे ही, तो कार्य होता ही है भगवान की कृपा से, आप लोगों के परिश्रम से, भक्ति से ये काम होगा। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को अपना अटेंशन करना चाहिए, जितनी सहायता हो सके करनी चाहिए कि मंदिर का निर्माण हो जाए शीघ्र से शीघ्र, बहुत जरूरी है। इसी शुभकामना के साथ मैं आपके चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमसे गलती हुई होगी बोलने में या व्यवहार में, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।